हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गुजरात, निमानी हाउस, रात का वक्त, करीब 11:30 बजे। विहा बेड पर लेटी थी और टुकुर टुकुर वेदांत को देख रही थी, जो फिलहाल हॉट वाटर बैग ढूंढ रहा था और उसे मिल नहीं रहा था। कुछ पल बाद विहा ने गला सही करते हुए धीरे से कहा, वेदांत, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी ठीक हूँ, पेन किलर काफ़ी रिलीविंग होती है। इतना बोलकर उसने अपने होठों को भींच लिया, क्योंकि वेदांत की नज़रें उस पर आ टिकी थीं। वेदांत ने कमर पर हाथ रखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, पता नहीं हमेशा चीज़ें उस वक्त क्यों गुम हो जाती हैं जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेदांत की बात सुनकर विहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे साथ भी बहुत बार ये होता है, खासकर जब पापा कुछ मांगते थे तब। जैसे कभी पेन मांग लिया तो मैं पूरे कमरे में ढूंढकर थक जाती थी, पर कभी पेन नहीं मिलता था। वेदांत ने उसके इतनी देर से परेशान चेहरे पर स्माइल देखी तो उसे अपने दिल में हल्की ठंडक का एहसास हो रहा था। वेदांत दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आता हूँ, हम दोनों टीवी देखेंगे। मुझे आज ही पता चला मॉम से कि तुम्हें टीवी देखने का बहुत शौक है। इतना बोलकर वेदांत कमरे से चला गया था और उसके जाते ही विहा बेड पर उठकर बैठ गई और अपना पेट पकड़ते हुए बोली, ये अकड़ू लठ अचानक से कोमल पत्ता कैसे बन गया। इतना बोलकर उसने अपना मुंह बिचकाया और फिर बेड से उठकर रूम में लगी एलईडी ऑन की। विहा वापस बेड पर आकर बैठी और अपने फ़ोन से एलईडी को कनेक्ट करने लगी। उसने बस सीरीज ऑन ही की थी कि दरवाज़ा फिर से खुला और वेदांत हाथों में कुछ स्नैक्स के साथ कमरे के अंदर आ गया। उसने एक नज़र टीवी की तरफ देखा जिसमें एक कोरियन ड्रामा चल रहा था जिसका टाइटल था हिडन लव। वेदांत ने स्नैक्स विहा के सामने रखे और खुद उसके पीछे बैठकर आहिस्ता से उसकी साड़ी का पल्लू उसकी कमर से हटाने लगा। उसके इस एक्शन के लिए विहा बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो उसकी पहली छुअन से बुरी तरह कांप उठी थी। उसने चिहुकते हुए पीछे मुड़कर कहा, वेदांत जी, आप क्या कर रहे हैं? उसकी इस हरकत पर वेदांत को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे जैसे ही विहा के चिहुकने का कारण समझ आया, उसने झट से विहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, लिटिल कम ऑन, इतना क्यों डर रही हो, इतना पेनफुल प्रोसेस भी नहीं है। विहा ने अपना हाथ वापस खींचते हुए आंखें बड़ी करके कहा, आप पागल हो गए हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, मैंने कहा ना आई एम ऑन माई पीरियड्स और आप, छी। विहा ने ये बोलकर गंदा सा मुंह बनाया और वेदांत को हंसी आ गई। उसने उसके हाथ पर पकड़ कसते हुए धीरे से कहा, क्या तुमने पहले एक्सपीरियंस किया है? विहा की बिल्ली जैसी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गईं और इस बार उनमें हैरानी और शर्म के साथ साथ कुछ और भी था, और वो था वेदांत के लिए बेहिसाब गुस्सा। उसने गुस्से से वेदांत से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बेशर्मी की भी एक हद होती है वेदांत, आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं, मैं तो अखंड सिंगल थी, मेरा तो कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, मैंने एक दिन मैगजीन में आपकी फ़ोटो देखी थी और इसी वजह से तो मैंने मैथमेटिक्स चूज़ किया था ताकि मैं आपकी कंपनी में एज अ इंजीनियर वर्क कर सकूं, और आप बोल रहे हो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, सीरियसली मेरा एक ही क्रश था और वो था वेदांत निमानी और आज मैं उसकी पत्नी हूँ, इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है। वेदांत मुँह फाड़े उसे देख रहा था। वेदांत ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो किसी का इतना बड़ा क्रश भी हो सकता है कि उसने पूरी लाइफ कभी कोई रिलेशनशिप भी ना बनाया हो। फिर वेदांत ने धीरे से कहा, टोमैटो, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो और तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा गंदा है, कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड सोच है तुम्हारी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो तुम समझ रही थी, मैं तो बोल रहा था कि क्या कभी कमर की मालिश करवाई है तुमने बाम से, जो तुम्हें पता है कि ये प्रोसेस पेनफुल होता है या नहीं, मैं तो तुम्हारी कमर की मालिश करना चाहता था ताकि तुम्हें पेन से थोड़ा रिलीफ मिल सके। वेदांत की बात सुनकर विहा एकदम से शक पका गई और फिर जल्दी से शर्म से अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, ओ, आज तो सच में मैं बहुत ज़्यादा गंदा सोच रही थी, हे भगवान, मेरा पूरा एपिसोड भी निकल गया इस चक्कर में। विहा ने रोनी सूरत बनाकर जैसे ही ये कहा, वेदांत ने उसका मोबाइल उठाते हुए उस एपिसोड को स्टार्टिंग से शुरू कर दिया और फिर उसे अपने आगे बैठने का इशारा करते हुए बोला, अब तो क्लियर हो चुका है ना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तो चलो यहाँ बैठ जाओ आराम से और एपिसोड फिर से शुरू हो जाएगा। विहा जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आहिस्ता से वेदांत के सामने बैठ गई और वेदांत ने फिर से उसकी साड़ी का पल्लू उठाते हुए बेड पर रख दिया। अब विहा की डीप नेक वाले ब्लाउज से झलकता आधी से ज्यादा कमर वेदांत की नज़रों के सामने थी। उसकी पीठ पर एक बहुत खूबसूरत तिल बना हुआ था, जिसे देखकर वेदांत का मन कर रहा था वो एक बार उस तिल को छू ले। लेकिन उसने अपने हाथ में थोड़ी सी बाम लेते हुए अपने काम पर फोकस करने की कोशिश की। वहीं विहा आंखें बंद करके वेदांत के छूने का इंतजार कर रही थी और खुद को प्रिपेयर कर रही थी ताकि इस बार वो चिहुकने की बजाय बेड पर इस तरह बैठी रहे। वेदांत ने अपनी ठंडी उंगलियां उसकी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता घुमानी शुरू की और विहा ने झट से अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। वो अपने निचले होंठ को चबाते हुए बस खुद को किसी तरह बेड से उठने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वहीं वेदांत का भी कुछ यही हाल था। उसकी गर्दन की नसें कुछ ज्यादा ही स्पीड में चल रही थी, पर वो बिल्कुल ये फील नहीं करना चाहता था और विहा के दिल से भी ये ख्याल निकाल फेंकना चाहता था। उसने अपने हाथ को हल्के हल्के मूव करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है टोमैटो, वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मैं तुम्हें कभी गलत तरीके से नहीं छूने वाला हूँ और वैसे भी मेरी तो गर्लफ्रेंड भी है ना, तो तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में ये अकड़ आई हुई है, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। विहा ने अपने होठों को गोल करते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और फिर आंखें खोलकर सामने चल रहे सीरियल को देखते हुए बोली, हाँ ये भी सही है, पर आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन तो मैं आपके लायक बन ही जाऊंगी। और दूसरी बात, अगर एक पति अपनी पत्नी को छूता है तो वो गलत तरीका कैसे हो सकता है? आपको क्यों लगता है कि मैं ये सोचती हूँ कि आप मुझे गलत तरीके से छू रहे हैं? बस वो मेरे लिए अभी ओवर हो रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा शर्म आ रही है और अब तो मैं भी फील नहीं कर रही हूँ, आप कर लीजिए आपको जो करना है। इतना बोलकर विहा ने आड़ा टेढ़ा मुंह बनाया और फिर अपने सीरियल पर फोकस करने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं वेदांत को बुरा भी लग रहा था। वो कभी किसी लड़की को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई बिल्कुल नहीं करता था कि वो किसी के लिए कितनी परफेक्ट है और कितनी नहीं, और ये लायक शब्द तो उसे सबसे बुरा लगता है। लेकिन फिलहाल वो विहा का ये कन्फ्यूजन दूर नहीं करना चाहता था कि वो सिंगल है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और उसकी कमर की मालिश करने के बाद अपने हाथ धोने वॉश बेसिन की तरफ चला गया। और जब वो वापस आया तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उसके पिद्दी सी बीवी अब बेड के बीचों बीच सिमट कर लेटी हुई थी, शायद उसे नींद आ गई थी। वेदांत हल्के से मुस्कुराते हुए नाम ऐसा हिलाया और फिर LED बंद करते हुए बेड के आसपास रखे स्नैक्स को उठाकर एक तरफ रखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम सच में कुंभकर्ण की वंशज हो, थोड़ा सा आराम मिला नहीं कि मोहतरमा को नींद भी आ गई।
पर अब उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो सोफे पर ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो सोफा उसकी साइज का तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी वो मन मारते हुए सोफे पर जाकर लेट गया।